मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 10 जनवरी 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 3 से 17 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं मणिभूषण पांडे, आप गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हैं, और तमन्ना मेहरौली नई दिल्ली से हैं। तो मणिभूषण और तमन्ना, आप दोनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक छोटी सी सूचना है और यह सूचना कल के लिए है, कल के लिए यानी कि 11 जनवरी शुक्रवार के लिए। सूचना यह है कि मैं अभी दिल्ली में हूं और हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है प्रगति मैदान में, जहां विश्व पुस्तक मेला चल रहा है। विश्व पुस्तक मेला प्रगति मैदान, राइट। प्रोग्राम ये रखा है कि वहां हॉल नंबर 11 है, स्थान को ध्यान से सुन ले, हॉल नंबर 11 11, स्टॉल नंबर 264, स्टॉल नंबर 264, इसमें 2 बजे से 3 बजे के बीच में मैं वहां उपस्थित रहूंगा अपने प्रिय स्टूडेंट्स से मिलने के लिए, आप सभी से मिलने के लिए। ये सभी के लिए ओपन है, जो हमारे क्लास के स्टूडेंट हैं उनका स्वागत है, जो डेली ऑडियो लेक्चर सुनते हैं उनका स्वागत है, और जो इन सुनने वालों के मित्र हैं उनका भी स्वागत है, और जो इनके मित्र नहीं है उनका भी स्वागत है, यानी कि कुल मिलाकर सभी युवा साथियों का स्वागत है। और मैं चाहूंगा कि मैं आप सबसे मिलूं और आप सब की बातें सुनूं, अपने तरफ से आप लोगों को हो सकेगा तो कुछ बताने की कोशिश करूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों से मिलने का ही एक अलग तरह का सुख होगा। दोस्तों, मैं रिपीट कर रहा हूं, 11 जनवरी कल यानी कि शुक्रवार को हॉल नंबर 11 स्टॉल नंबर 264, समय दोपहर 2 से 3 बजे के बीच में। आइए अब हम लोग न्यूज पर बात करते हैं। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के तहत मैं आप सबसे संविधान में संशोधन, इस पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए कुछ थोड़ी सी दूसरी चीजों को देख लेते हैं। हालांकि दूसरी बातें, दूसरी घटनाएं कुछ ऐसी हैं नहीं, सच पूछिए तो मुख्य विषय से ही जुड़ी हुई घटनाएं हैं, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आज के करेंट कंटेंट के तहत एक आर्टिकल आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, वो है कूटनीति और आस्था, करतारपुर गलियारा। कूटनीति और आस्था, करतारपुर गलियारा। करतारपुर गलियारा के बारे में आपको ध्यान होगा कि मैंने कुछ दिनों पहले जब इस गलियारे के बारे में समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में कि यह गलियारा बनाया जाएगा, उद्घाटन हुआ था कहना चाहिए, शुरुआत हो गई थी, उस समय मैंने इसके बारे में बात की थी और इशारा भी किया था कि किस तरीके से ये आस्था और कूटनीति का एक बहुत अच्छा संगम दिखाई दे रहा है। उस पर यह आर्टिकल है, इंटरनेशनल रिलेशन की दृष्टि से यह बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल मुझे मालूम पड़ रहा है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नो डाउट कि जो राष्ट्रीय हित होते हैं वो तो काम करते ही करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि उन राष्ट्रीय हितों को आप हासिल कैसे करेंगे, उन्हें साधेंगे कैसे। मान लीजिए कि किसी दो देशों के बीच में, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव है, किसी किन्हीं बातों को लेकर के मतभेद हैं, तो अब आप उस तनाव को ढीला कैसे करेंगे और मतभेदों को कम कैसे करेंगे, तो उसके क्या उपाय हो सकते हैं। तो ठीक है, कूटनीति तो अपनी जगह काम करती रहेगी, हमारे देश के लोग क्या चाह रहे हैं, हमारी सत्ता अभी क्या कहती है, हमारी फिलॉसफी क्या है, वर्ल्ड सिनेरियो क्या है, किससे फ्यूचर में जाकर के हमें लाभ मिल सकता है, कूटनीति में आप इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं। लेकिन उसमें दूसरे जो बिंदु होते हैं, चाहे वो संस्कृति के बिंदु हों, चाहे वो खेल के हों, चाहे इस तरह की आस्थाओं के हों, उनका भी अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये पूरी तरह से आपको सफलता तो नहीं दिला सकते कि बिल्कुल कोई पासा पलट ही जाएगा, लेकिन डेफिनेटली जब इस तरह की शुरुआतें होती हैं तो इससे जो तनाव है उसमें थोड़ा सा ढीलापन आता है, जो मतभेद हैं उनका तीखापन थोड़ा सा कम होता है, और एटलीस्ट एक दूसरे के प्रति कहीं न कहीं सकारात्मक विचार भी बनते हैं कि नहीं, इस रूप में भी बात की जा सकती है। तो उसी को आधार बना करके यह आर्टिकल किसी ने लिखा था दोस्तों, उसका हिंदी वर्जन आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। एक बात मैं और भी बता दूं कि जो इस तरह के लेख होते हैं जो आपको हिंदी में प्रोवाइड किए जाते हैं वो विशुद्ध ट्रांसलेशन नहीं होता, यानी कि जो लेख छपा था ज्यों का त्यों उसे हिंदी में प्रोड्यूस कर दिया गया है, नहीं ऐसा नहीं होता है। स्टूडेंट को ध्यान में रखकर और ऐसे स्टूडेंट को जो सिविल सर्विस में अपीयर हो रहे हैं उनको ध्यान में रख करके जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं वही आप लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं। फ्रेंड्स अब मैं बात करूंगा थोड़ा सा जो आर्थिक रूप से जो कमजोर सामान्य वर्ग के लोग हैं उनसे संबंधित विधेयक। आपने देखा कि राज्यसभा से भी पारित हो चुका है, न्यूज में आपने सुना होगा कि अभी उस पर बहस चल रही है, लेकिन अब वो पारित हो चुका है। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह विधेयक सीधे सीधे कानून में तब्दील हो जाएगा, राइट। तो इसी को आधार बनाकर के मैंने संविधान संशोधन विषय को चुना है, लेकिन कुछ बातें मैं आपसे करना चाहूंगा और खासकर प्री एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर। आपको मालूम होना चाहिए कि प्री एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, वो दिखते तो ऐसे हैं जैसे कि वो किताब से पूछे गए हैं और होते भी किताब से ही हैं, लेकिन इनफैक्ट उनका जो आधार होता है, उनकी जो जड़ होती है कह लीजिए, उन प्रश्नों के जो जड़ होते हैं वो कहीं ना कहीं तात्कालिक या समसामयिक घटनाओं में होते हैं। सबके साथ ऐसा नहीं होता है लेकिन ज्यादातर के साथ ऐसा होता है, और मैंने बहुत गंभीरता से देखने पर, बहुत गहराई से देखने पर यह पाया है कि अगर इस तरीके से समझने की कोशिश की जाए तो लगभग 60-70% क्वेश्चंस कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स से जुड़ जाते हैं। कुछ तो होते हैं जो सीधे सीधे करंट अफेयर्स से होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट से तो होते हैं लेकिन उनकी जो नाल होती है वो करंट अफेयर्स से होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप बार बार, खासकर ये जो आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण देने संबंधी जो बात अभी चल रही है उसमें अनुच्छेद 15 और 16 की चर्चा पड़ी है, आपने सुनी भी है, लगातार आप सुन रहे हैं कि सरकार अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन कर रही है, 15 और 16 में संशोधन कर रही है। अब स्वाभाविक है कि हमें मानकर चलना चाहिए कि हमारे लिए अनुच्छेद 15 और 16 बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। अब मान लीजिए कि अनुच्छेद 15 और 16 की कुछ बहुत बारीक बात प्री एग्जाम में पूछ लिया गया, बहुत ही बारीक जो सामान्यतः नहीं पूछे जाते, हम अपेक्षा भी नहीं करते कि अनुच्छेद से इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन इस साल अगर पूछ लिया जाता है 2019 के प्री एग्जाम में तो क्या वह गलत होगा? वह गलत बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए गलत नहीं होगा कि जो एग्जामिनर है या यूं कह रहे जो पेपर सेटर है, अगर वो ये उम्मीद करता है कि चूंकि अनुच्छेद 15 और 16 बहुत अधिक चर्चा में रहे हैं इसलिए स्टूडेंट को इसके बारे में विशेष चीजें जाननी चाहिए और उसे पढ़ने को भी मिली हैं, तो उससे इस तरह की बातें पूछना, बारीक बातें, महीन बातें पूछना या कह लीजिए कि विशेषज्ञता के स्तर पर ले जाकर के बातें पूछना गलत नहीं होगा, बल्कि सच तो यह है कि उसे यह जानना ही चाहिए। तो मित्रों आपको अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 के बारे में बहुत अच्छी तैयारी कर लेनी चाहिए, राइट। अगर हो सकेगा तो मैं आप कैसे इसे बारीक तरीके से तैयार करेंगे, यदि संभव हुआ तो कल मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगा। आइए अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं जो संविधान में संशोधन को लेकर है। जब आप संविधान, भारतीय संविधान की विशेषता पढ़ते हैं तो देखिए उसमें एक विशेषता आती है कि संविधान बहुत लचीला है और बहुत कठोर भी है, विरोधाभासी बातें कि संविधान बहुत आसानी से आप इसको बदल भी सकते हैं लेकिन बहुत कठोर भी है, आसान भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि भारतीय संविधान में जब जो परिवर्तन करने की व्यवस्थाएं की गई हैं इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूशन में ही, कुछ तो ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें आप बहुत सामान्य तरीके से बदल सकते हैं लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो बहुत कठिन हैं। तो जैसा संविधान का जो अनुच्छेद दोस्तों 368 है, ये आपको याद होना चाहिए, अनुच्छेद 368, क्योंकि अभी वर्तमान में ही जो घटनाएं घटी हैं वो आरक्षण को लेकर के ये सब उसी से जुड़े हुए हैं। 368 में, और वो भी संविधान का भाग भी आपको याद हो जाना चाहिए कि संविधान के भाग 20, ये भाग 20 में है अनुच्छेद 368, इसका संबंध संविधान में संशोधन किए जाने से है। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आवश्यकता के अनुसार, जो अभी आपकी आवश्यकता है, आपके दिमाग में बिल्कुल चिपक जाने चाहिए। संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368, संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368। तो हमारे यहां संविधान में संशोधन किए जाने के तीन अलग अलग तरीके हैं, यानी कि इनमें से किसी भी तरीके से संशोधन किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। जो हमारा पूरा संविधान है उसके कुछ अनुच्छेद को बहुत ही सामान्य बहुमत से बदला जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है बिल्कुल सामान्य बहुमत से। जैसे कि अभी संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 ये सामान्य बहुमत से नहीं बदला गया है, अभी तो ये विशेष बहुमत से बदला गया है। चलिए मैं उस पर बाद में आऊंगा, पहले तो जो साधारण बहुमत से जो बदलने वाले अनुच्छेद होते हैं, जैसे अनुच्छेद 2, 3, 4, उदाहरण के तौर पर आपको संसद सदस्यों का वेतन बढ़ाना है, नए राज्य की अनुमति देनी है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विभाजित हुआ यानी कि तेलंगाना नया राज्य बना तो नई सीमाएं बनी दोनों राज्यों की और एक नए राज्य का निर्माण हुआ, इसके लिए संसद की अनुमति जरूरी है। तो आपके संविधान में दिया हुआ कि इसके लिए क्या व्यवस्था होगी, तो इसे संसद साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है। साधारण बहुमत का मतलब है कि लोकसभा उसे साधारण बहुमत से पारित कर दे और फिर राज्यसभा उसे साधारण बहुमत से पारित कर दे, यह बहुत आसान है। दूसरा है विशेष बहुमत, जिसके तहत अभी संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में परिवर्तन किया गया है और परिवर्तन करके उसमें आर्थिक शब्द जोड़ा गया है, इस पर हो सका तो हम लोग कल बात करेंगे। विशेष बहुमत क्या है? ये विशेष बहुमत पर मैंने देखा है कि स्टूडेंट थोड़े से भटक जाते हैं। देखिए, विशेष बहुमत के दो पक्ष हैं, उसमें दो शर्तें अनिवार्य होती हैं। उदाहरण के तौर पर मैं अब सदस्य संख्या हटा देता हूं, 100 का आंकड़ा लेकर चलता हूं और ये दोनों ही सदनों में होना चाहिए। मान लीजिए कि लोकसभा में 100 सदस्य हैं, ठीक इसी तरह से राज्यसभा में भी 100 सदस्य हैं, और याद रखिए कि ये दोनों अलग अलग सदनों में पारित होंगे, इनका आप संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते, अलग अलग ही पारित होना है। 100 सदस्य लोकसभा में हैं, ठीक है, तो बहुमत यानी कि 51, कम से कम 51 वोट मिलने ही चाहिए, ये हो गया पहला फार्मूला, पहली शर्त कहना चाहिए। दूसरा है उपस्थित सदस्यों का 2/3, उपस्थित सदस्यों का 2/3। मान लीजिए कि 100 सदस्य लोकसभा की सदस्य संख्या में से 60 लोग वोट देने के लिए लोकसभा में मौजूद थे और 60 लोगों ने वोट दिए, 60 लोगों ने, ठीक है, गणित से ही समझिएगा, 60 लोगों ने, और मजेदार बात है कि 60ों के 60ों लोगों ने, सभी लोगों ने पक्ष में, आपके 60 लोगों में से आप यूं कह लीजिए कि 48 लोगों ने तो सरकार के पक्ष में, इसके पक्ष में वोट दे दिया, और बाकी जो 12 लोग बचे उन्होंने विपक्ष में दिया, तो 51 से कम हो गए तो पारित नहीं होगा, और ऐसी स्थिति में तो सरकार ही गिर जाएगी अगर सरकार संशोधन विधेयक लेकर के आई है। अब दूसरे पक्ष में हम आते हैं, मान लीजिए कि 100 के 100 सदस्य उपस्थित हैं और इन 100 सदस्यों में से 60 लोगों ने पक्ष में वोट दे दिया। मैं रिपीट कर रहा हूं, 100 के 100 सदस्य उस संविधान संशोधन के मतदान के समय उपस्थित हैं और उन 100 लोगों में से 60 लोगों ने संशोधन के पक्ष में मतदान किया, ठीक है, तो जरूरत तो 51 की थी, तो वो शर्त तो पूरी हो गई, वो शर्त पूरी हो गई। लेकिन जो उपस्थित या मतदान करने वाले के सदस्यों का जो 2/3 था, इसका मतलब है कि इसको 67 मत चाहिए थे, 67, लेकिन 67 की जगह मिले कितने, केवल 60। देखिए, जो बहुमत से तो अधिक है लेकिन जो उपस्थित सदस्य हैं उनका 2/3 नहीं है, इसका मतलब है कि यह पारित नहीं होगा। और याद रखिए कि ऐसी स्थिति में सरकार नहीं गिरेगी, सरकार को तो केवल सदन में बहुमत ही चाहिए, तो बहुमत 51 से अधिक उन्हें मिल चुके हैं, 60 वोट मिले हैं लेकिन 66 नहीं मिले, ऐसी स्थिति में वो संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं होगा। इसे हम कहते हैं मित्रों विशेष बहुमत, विशेष बहुमत। इसकी दो शर्तें हो गई, पहला कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित सदस्य संख्या का दो तिहाई। लोकसभा में भी ऐसा ही होगा, राज्यसभा में भी ऐसा ही होगा। दूसरे जो विधेयक होते हैं उनके बारे में एक प्रोविजन किया गया है कि अगर राष्ट्रपति चाहें तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं और फिर संयुक्त मतदान करा सकते हैं, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं होगा। दोनों ही सदनों के द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए। और ऐसे संविधान संशोधन विधेयक को याद रखिए, साइन करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होते हैं, मतलब राष्ट्रपति की फिर चॉइस नहीं है कि वो फिर से इस पर विचार करने के लिए संसद को लौटा सकें, राष्ट्रपति को उस पर साइन करना ही पड़ेगा। जो तीसरा प्रकार है मित्रों, वो इससे भी कठिन है और उसमें केवल एक चीज और ऐड हो जाती है कि विशेष बहुमत से संसद उसे पारित करके राज्यों के पास भेजेगी और फिर राज्य, जब आधे से अधिक राज्य उसे स्वीकार कर लेंगे तब वह संविधान संशोधन पारित होगा। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली में आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको राज्यों की अनुमति लेनी पड़ेगी। जीएसटी बिल जब आया देखिए तो उसमें भी आपको राज्यों की अनुमति लेनी पड़ी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कार्यों में आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको राज्यों की अनुमति लेनी पड़ेगी। इसे हम कहते हैं विशेष बहुमत प्लस राज्यों का की सहमति, आधे से अधिक राज्यों की सहमति। तो मित्रों, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सब अपने अपने हिसाब से देख लेंगे। सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं दोस्तों। और साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।